वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से कुलुसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम कुलुसी की पत्री से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पौलुस ने 5 महान सत्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया था। परमेश्वर ने हमें ज्योति में वास करने वाले संतों के सहभागी होने के उत्तराधिकार के योग्य ही सृजा है। उसने हमें अंधकार की प्रभुता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति दिलाई है और उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दी है। परंतु आज भी अनेक पवित्र जन हैं जो इन 5 बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे विश्वासी मित्रों, ये तो आपकी भी हो सकती है। अतः आप इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं? तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस हमें क्या बताना चाहता है। जी हाँ, हमने श्रेष्ठ गीत के अध्ययन में प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के बारे में चर्चा की है। कुलुसियों की पुस्तक में हम इस विषय में और अधिक गहराई में उतरकर उसकी धर्म विज्ञान को देखेंगे। यह अंश इस पत्री का एक अत्यधिक गहरा और पावन और महान अंश है। यहाँ प्रभु यीशु का मनुष्यत्व मुख्य विषय है। वहाँ उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं कर सकते, वरन इस जीवन में हम उसे उसकी संपूर्ण महिमा गरिमा में समझ भी नहीं पाएंगे। यह अंश उन लोगों के लिए उत्तर है जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। इन पदों को समझने का अर्थ है प्रभु यीशु की महानता को समझना। पौलुस यहाँ विशेष करके कलीसिया की सबसे पुरानी भ्रमित शिक्षा का खंडन करने का प्रयास कर रहा है। यह शिक्षा भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की है। आरंभिक भ्रम की शिक्षा में यह एक और शिक्षा थी, एरियनवाद। सिकंदरिया के एरियस के अनुसार प्रभु यीशु भी सृजित प्राणी था, जिसके प्रतिवाद में सन 325 में नायसिया की सभा में स्थापित किया गया, पुत्र मनुष्य का मनुष्य है और परमेश्वर का परमेश्वर है। आगे चलकर कलीसिया के इतिहास में सोसिनस ने एक और भ्रम की शिक्षा को जन्म दिया। उसके अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं था और मनुष्य को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्तिदाता की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट नहीं है। आज एकतावादी इसी आधार पर चलते हैं और कुछ पंथ वरन जेहवाज विटनेस भी इसी बात को मानते हैं। यहाँ मसीह को किसी भी जीवित प्राणी से भिन्न और प्रवर दिखाने के लिए उसकी पहचान के 9 लक्षण हैं। आइए हम देखेंगे कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहला हम देखते हैं, वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप कैसे हो सकता है? क्या आप किसी अदृश्य वस्तु का फोटो या छवि बना सकते हैं? तो फिर यीशु कैसे उसकी छवि बना? यूहन्ना अपने सुसमाचार के आमुख में इसे स्पष्ट करता है, आदि में वचन था, यह अनादि आरंभ था, मसीह का आरंभ नहीं था। जी हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में हम इसे पढ़ते हैं, जब यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ, इसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं। आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में बड़े दिन की कहानी सुनना है तो वह यही है कि वह देहधारी हुआ। इस प्रकार वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप बना। वह ऐसा कैसे बना? क्योंकि वह परमेश्वर है। यदि वह परमेश्वर नहीं था तो वह अदृश्य परमेश्वर का रूप कैसे हो सकता था? दूसरी बात हम देखते हैं कि वह पहलौठा है। इससे परमेश्वर पिता के साथ उसका संबंध और त्रिएक परमेश्वर में उसका स्थान प्रकट होता है। परमेश्वर अनंत पिता है, पुत्र अनंत पुत्र है, त्रिएकत्व में उसका स्थान पुत्र का है। पहलौठा से स्पष्ट होता है कि वह सृष्टि से पूर्व का है। पहलौठा का अर्थ यह नहीं कि वह पहले जन्मा। अतः हमें धर्मशास्त्र में पहलौठे का अर्थ को समझना है। धर्मशास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु का आरंभ बेतलेहम में हुआ था। मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में भविष्यवाणी है कि उसका जन्म बेतलेहम में होना था, परंतु वह अनादि से आया था। यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बालक तो उत्पन्न हुआ परंतु पुत्र दिया गया। वह अनादि से आया और मानव रूप धारण किया। मेरे प्रियो, पौलुस उस युग के एक दार्शनिक विचार, धर्मों के एक रहस्य के विषय कह रहा है। इस विचार में माना जाता था कि परमेश्वर ने एक प्राणी की रचना की जो उससे बस कुछ ही कम था। इस प्राणी ने अपने से नीचे एक प्राणी बनाया और इस प्रकार प्राणी द्वारा प्राणी की सृष्टि होते होते उस प्राणी तक आती है जिसने जगत की रचना की। ये परमेश्वर के उद्भव हैं। आध्यात्मवाद की शिक्षा थी कि प्रभु यीशु एक सृजित प्राणी था, परमेश्वर का उद्भव। पौलुस इसका उत्तर दे रहा है। वह कहता है कि प्रभु यीशु सृष्टि से पहलौठा, यानी कि सृष्टि में पहलौठा है। वह संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसके यूनानी शब्द का अर्थ संपूर्ण सृष्टि से पूर्व है। वह सृष्टि का सृजित अंग नहीं है। वह 2010 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर देह धारण करके आया था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम इसे पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर अनंत पिता है, पुत्र परमेश्वर अनंत पुत्र है, और ऐसा कोई भी समय नहीं था जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर प्रभु यीशु को पहलौठा कहा गया है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड से पूर्व का है, वह मृतकों में भी पहला उठा कहलाता है, वह एक लौता कहलाता है। इस अध्याय के पद 18 में उसे मृतकों में पहला उठा कहा गया है। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7 पद में भजनकार कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। पौलुस गलातिया प्रदेश के अंताकिया नगर में जब प्रचार कर रहा था, तब उसने अपने उस महान उपदेश में इस विचार पर प्रकाश डाला कि भजनकार के अनुसार प्रभु यीशु मृतकों में पहला उठा था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। यीशु को जब पहला उठा कहा गया है तो वह बैतलहम में उसके जन्म के बारे में नहीं, इसके बारे में वह नहीं कह रहा है। यह मसीही विश्वास का पद नहीं है, इसका अर्थ है कि उसका पद सबसे बड़ा है, उसकी उत्पत्ति से इसका कोई भी संदर्भ नहीं है। भजन संहिता 89 उसके 27 पद में भजनकार कहता है, फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु अनंत पुत्र संपूर्ण सृष्टि पर सबसे ऊंचे स्थान पर है। दूसरे शब्दों में वह सृजनहार है, वह चरणपति चरण सृजीव प्राणियों में से नहीं है, उसने तो स्वयं ही सृष्टि की रचना की है। मेरे प्रियो, मैं यहां कुछ बाइबल पदों का उल्लेख करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु के मनुष्यत्व की चर्चा करती है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इससे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह मात्र एक सृजित प्राणी है। आपको क्या ऐसा लगता है? वह ईश्वरत्व का द्वितीय अंश है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में वह कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रभु यीशु सृजित प्राणियों में से एक नहीं है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राज्य दंड न्याय का राजदंड है। अतः मेरे मित्रों, हम यहां जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि प्रभु यीशु एक सृजित प्राणी नहीं है, वरन वह परमेश्वर है। जब वह संसार में आया तब एक बालक उत्पन्न हुआ था, परंतु हमें पुत्र दिया गया था, वह अनादि काल से निकल कर आया था। लुकार्ची सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह यही है। इस संसार में आने से पूर्व वह परमेश्वर का पुत्र था। मत्तीरची सुसमाचार 16 अध्याय के 16 पद में पत्रस की गवाही है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे मित्रों, अब हम प्रभु यीशु के बारे में दो महान कथन को देखते हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब हम तीसरी बात यहां देखते हैं, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यदि सब वस्तुएं उसी से उत्पन्न हैं, तो उसके सृजित प्राणी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः सृष्टि में पहलौठा का अर्थ यह नहीं कि वह भी एक सृजित प्राणी है, उसने तो स्वयं सृष्टि की रचना की है। मेरे मित्रों, सृष्टि दो रूप में है, दृश्यमान और अदृश्य। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मिक प्राणियों में भी अलग श्रेणियां हैं, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार आदि। स्वर्गदूतों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। धर्मशास्त्र के अन्य पद हमें बताते हैं कि करूब और सराफ स्वर्गदूत भी हैं, प्रधान स्वर्गदूत भी हैं और आम साधारण स्वर्गदूत भी हैं। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि हमारा बैरी आत्मिक है। शैतान के विद्रोह में अनेक स्वर्गदूत उसके साथ थे, अतः हमारे आत्मिक बैरी के भी अनेक पद हमें मिलते हैं। आइए हम चौथी बात को देखते हैं। यह जानना अति अद्भुत बात है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृजित हैं। हमारे लिए यहां एक और सत्य प्रकट किया गया है, सब वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई हैं। यदि आप रात में आकाश को देखें तो वहां अनेक सितारे दिखाई देंगे। वर्षों पूर्व ज्योतिषियों ने आकाश को देखा और एक विचित्र सितारा दिखाई दिया, परंतु आपको वह सितारा नहीं दिखेगा। अन्य सब सितारे आप देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सितारे अपने अपने स्थान में ही क्यों स्थिर हैं? एक सितारा आकाश में अपने ही स्थान में क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे वहां रखा है। सब वस्तुएं उसके द्वारा सृजित ही नहीं, उसके लिए सृजित हैं। इस संबंध में एक अति महान सत्य प्रकट है। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी और प्रभु यीशु के संगी वारिस हैं। हमें एक दिन बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। अति संभव है कि वह हमें एक संपूर्ण सितारा दे दे। मैं जानता तो नहीं हूं, परंतु सोचता हूं और मेरे विचार में हम अनंत काल के युग में अत्यधिक व्यस्त होंगे। उस समय हम पार्थिव प्राणी नहीं होंगे, हमारी देह अलग होगी जो आकर्षण शक्ति से मुक्त होगी। हम नए यरूशलेम में वास करेंगे और परमेश्वर के इस विशाल जगत में विचरण कर पाएंगे। मैं नहीं जानता कि इस जगत का कितना भाग वह हमें देगा। उसने ही इसकी रचना शून्य से की है और वह उसे अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करता है। मेरे प्रियो, यह उसका जगत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी पेड़ का पत्ता ऐसा क्यों है, तो वह ऐसा इसलिए है कि उसने चाहा कि वह ऐसा हो। वह उसके द्वारा और उसके लिए रचा गया है। हम एक दिन वहां होंगे, वह हमारा उत्तराधिकार है। मैं इस विषय में अधिक चिंता नहीं करता क्योंकि ऐसा करना कल्पना होगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हम सोचते हैं कि उसकी उपस्थिति में होना कैसा अद्भुत होगा। हम जानते हैं कि वह एक अद्भुत स्थान होगा जहां पर हम होंगे। यहां जिस संसार में हम रहते हैं, हम तंबुओं में वास कर रहे हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:1 में इस देह को डेरा अर्थात तंबू कहता है। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिर जाएगा, यह डेरा मरणोपरांत मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात यह शरीर। तो पौलुस कहता है, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। 5:8 में लिखा है, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम प्रभु के साथ अपने घर में होंगे। यदि आपका घर 1 करोड़ रुपए का है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एक क्षणभंगुर डेरा है, परंतु एक दिन हम महिमामय देह में होंगे और हमें अपनी विरासत मिलेगी। आप इस सांसारिक मकान में नहीं रहेंगे, चाहे वह यहां रहे या ना रहे। चाहे 1 करोड़ का हो या 2 करोड़ का हो, हमारी नई देह अनंत होगी। हम सदा सर्वदा उसके साथ होंगे। परमेश्वर की संतान के लिए यह उसका भविष्य है। मैं इसकी बाट जो रहा हूं। जी हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। कुलुसियों के पत्र 1:17 में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब हम 5वीं बात देखते हैं यहां पर, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु में सारी परिपूर्णता वास करती है। कुलुसियों के पत्र 2:9 में वह कहता है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। हम उसमें सिद्ध किए गए हैं। वह सब वस्तुओं में प्रथम है। वह देह धारण से पूर्व का मसीह यीशु है। अब हम 6वीं बात देखते हैं, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वह सब वस्तुओं को स्थिर रखता है। वह सृष्टि का संचालन करता है। वह उसका नियंत्रण करता है। स्थिर का मूल अर्थ है एक साथ थामना। वह ब्रह्मांड का एक गोंद है। मनुष्य ने एक साहसी परंतु मेरे विचार में बड़ा घिनौना काम किया है कि उसने अणु का विभाजन किया है। प्रभु यीशु ने सृजन कार्य करते समय अणु को बांधा था। मनुष्य ने उसे विभक्त किया। क्या आपने कभी अणुशक्ति की कल्पना की है? यदि एक एटम बम में ऐसी विनाशकारी शक्ति होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कैसी महान शक्ति होगी? इस शक्ति को किसने वश में किया हुआ है? उसने इसकी रचना ही नहीं की है, वरन वह इसे संयोजित भी किए हुए है। मेरे विचार में इसे स्थिर रखना एक महान कार्य है। प्रभु यीशु ही है जो इस काम को कर सकता है और करता है। यही सत्य इब्रानियों के पत्री 1:3 में कहा गया है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। जी हाँ, क्या वह एक महान मनुष्य नहीं है? वह अति महिमामय है। कुलुसियों के पत्र 1:18 में लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलिसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। 7वीं बात है, वही देह अर्थात कलिसिया का सिर है। मेरे विचार में यह कुलुसियों की पत्री का मुख्य वाक्य है। यह पत्री इफिसियों की पत्री की संगी पत्री है। दोनों ही में कलिसिया को इस पृथ्वी पर मसीह की देह कहा गया है। कुलुसियों को लिखे पत्र में मुख्य विचार कलिसिया का सिर प्रभु यीशु है और इफिसियों की पत्री में लिखा है 1:22 में, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कलिसिया को दे दिया। और फिलिपियों की पत्री में हम कलिसिया को इस संसार में पांव पर चलते हुए देखते हैं। वहां हम कलिसिया का अनुभव, विश्वासी का अनुभव देखते हैं। ये पत्रियां संगी पत्रियां हैं। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। क्या आप जानते हैं कि आज एक ही ऐसा मनुष्य है जो महिमामय देह में पुनर्जीवित है? वह मृतकों में पहला उठा है। जब आप अपने प्रियजन को मरणोपरांत कब्र में रखते हैं तो वह केवल उसका विश्राम स्थल है। कुछ दिन बाद शुभ प्रभात का उदय होना है। शरीर तो सो गया है और आत्मा प्रभु के पास चली गई। जब प्रभु यीशु अपनों को इस संसार में ले जाने के लिए आएगा तब वह देह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के कारण फिर जी उठेगी। वह विनाश में भूमिगत तो हो गई है परंतु अविनाशी हो फिर से जी उठेगी। 1 कुरिन्थियों के पत्र 15:42 में हम इसे पढ़ते हैं, हम ठीक प्रभु यीशु के स्वरूप होंगे। 1 यूहन्ना के पत्र 3:2 में यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब हम आठवीं बात को देखते हैं कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आप इससे अधिक उत्तम बात के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि में प्रभु यीशु की इच्छा ही पूरी होती है। परमेश्वर की यही इच्छा है इस पृथ्वी पर मनुष्य के विद्रोह के उपरांत भी। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 2:6 में, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। आज परमेश्वर बिना समझौते अडिग अविचलित एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह लक्ष्य है आज के इस विद्रोही संसार में प्रभु यीशु को राजगद्दी पर बैठाना। यह परमेश्वर का उद्देश्य है ताकि हर एक मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त करे, शांति और आनंद को प्राप्त करे। क्या आप नहीं चाहते कि आपका राजा आपको शांति और आनंद दे? अपने हृदय के सिंहासन पर उसे बैठाएं। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु सृष्टि करता है और वह इस संसार का संचालन करता है और वही उद्धार करता भी है। आज अपने जीवन में उसे जगह दें और आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।